जयधवला पुस्तक 11वीं लेक्चर नंबर 5। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोये सर्वसाऊणं, वेदगवेदगवेदगं, अवेदगं वेदगं ततं सिद्धं, सिद्धं परमीय शिरसा कोच्छं वेदगमहारियारम। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पावर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिशुभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 11वीं पुस्तक जो वेदक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 33 पर आ गए, 33। अब यहाँ अपनी जो मूल प्रकृति अनुभाग उदीर्णा में देख रहे हैं हम, उसमें क्षेत्रानुगम देखा था, अभी हम स्पर्शनानुगम देखने वाले हैं। बढ़ते हम स्पर्शनानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओह और आदेश। नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है यहाँ पर। ओह से अवक्तव्य अनुभाग के उदीरकों ने लोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है, क्योंकि वो तो उपशम श्रेणी से उतरने वाले। शेष पद संबंधी अनुभाग के उदीरकों ने सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। इसी प्रकार तिर्यंचों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्य पद नहीं है। इसका अर्थ है जो छह वृद्धि छह हानि वो सर्वत्र सभी जीवों में पाई जाएगी। स्पर्शन की अपेक्षा बात करें अभी यहाँ पर, क्योंकि क्षेत्र में भी हमने पूरे छह वृद्धि छह हानि और अवस्थित का पूरा लोक देखा था, स्पर्शन में तो होगा ही होगा। आदेश से नारकियों में सब पद संबंधी अनुभाग के उदीरकों ने लोक के असंख्यात भाग उनका रहने का यानी क्षेत्र और त्रस नाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है मारणांतिक। इसी प्रकार दूसरी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक के नारकियों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि अपना अपना स्पर्शन कहना चाहिए। जो पृथ्वी जितनी नीचे है 14 भागों में से उतने भाग कह देना। पहली पृथ्वी में स्पर्शन क्षेत्र के समान है, क्योंकि पहली पृथ्वी तो
संख्यातीय
जन नीचे है। सब पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य पर्याप्तों में सब पद संबंधी अनुभाग के उदीरकों ने लोक के असंख्यात भाग और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है मारणांतिक की अपेक्षा पूरा लोक। इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है इनमें अवक्तव्य पद का भंग क्षेत्र के समान है लोक का असंख्यात। देवों में सब पद संबंधी अनुभाग के उदीरकों ने लोक के असंख्यात भाग और त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 और कुछ कम 9 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। ये तो 8वीं पृथ्वी में मारणांतिक की अपेक्षा। इसी प्रकार भवनवासियों से लेकर अच्युत कल्प तक के देवों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि अपना अपना स्पर्शन कहना चाहिए। भवनत्रिक में जैसे 3.5 भाग 14 भागों में से
और
अन्य ले गए तो 8 भाग और फिर 9 भाग। सौधर्म ईशान के ऊपर हाँ वही, इसीलिए अपना अपना स्पर्शन देख रहे हैं। हम भवनेत्री का देखा हमने, सौधर्म ईशान का भी वहाँ यानी ऊपर पृथ्वी कायिक में मारणांतिक करेंगे, उसके ऊपर पृथ्वी कायिक वाले वो नौ वाली बात नहीं
रहेगी, होगी
आठ वाली रहेगी। कहाँ तक? सहस्रार तक। सहस्रार के ऊपर अच्युत तक,
और बाकी
ऊपर तो अपना अपना है, लोक का संख्या ऊपर क्षेत्र के समान बन गए, ऊपर यानी ग्रहवेग और ऊपर लोक का संख्या का भाग। इसी प्रकार अनाहरक मार्गना तक जानना चाहिए विशेषार्थ। ओव से मोहनीय के अवक्ते उदीर्णा उपशम श्रेणी से उतरते समय व मोहनीय के अनुदीरक के मरकर देव होने पर प्रथम समय में होती है। यतः ऐसे जीवों का स्पर्शन लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में ही पाया जाता है, इसलिए वह उक्त क्षेत्र प्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम। यानी मरकर जाने वाले की अपेक्षा भी वो मनुष्य में से चले जाएंगे ऊपर
45 लाख।
हाँ, तो 45 लाख योजन ही होगा, पूरा नहीं होगा 14 राज्यों में, वो बताएंगे नहीं। कालानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है। ये नाना जीवन की अपेक्षा काल चलेगा भी, एक जीव की अपेक्षा हमने देख लिया था। ओघ और आदेश। ओघ से एक जीव की अपेक्षा क्या देखा था काल वृद्धि में, याद है? हाँ, एक समय और
नहीं 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 दो सभी नहीं देखा था।
पांच वृद्धि हानि का अलग था और अनंत गुण वृद्धि हानि का अंतर्मूर्त कुछ देखा था। उसका अंतर तो अंतर्मूर्त देखा था और काल भी अंतर्मूर्त देखा।
अंतर्मूर्त देखा है अनंत गुण वृद्धि और अनंत गुण हानि का।
अनंत गुण वृद्धि का और अनंत गुण हानि का काल लगातार अंतर्मूर्त, एक समय से लेकर अंतर्मूर्त।
और अवस्थित का संख्यात समय देखा था।
और पांच वृद्धि और पांच हानि का उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात विभाग अवस्थित वाला संख्यात समय। अब यहाँ आता है, आते हम अब यहाँ नाना जीवन की अपेक्षा बात चले। तो कालानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ये वृद्धि का नंबर कितना हुआ?
10।
देखो वृद्धि 6, 7, क्षेत्र को 8, 9
और ये 10
स्पर्शन को 9 और ये जो काल है नाना जी उनकी अपेक्षा 10 नंबर। ओघ और आदेश। ओघ से अवक्तव्य अनुभाग के उदीरक जीवों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्या समय है। एक जीव के लिए एक ही समय लगेगा और इसके एक के पश्चात एक लगातार कोई होगे तो संख्यात होगे। शेष पद अनुभाग के उदीरक जीवों का काल सर्वदा है। इसी प्रकार तीर्यंचों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्य पद नहीं है। आदेश से नारकियों में अनंत गुण वृद्धि और अनंत गुणहानि अनुभाग के उदीरक जीवों का काल सर्वदा है। शेष पद अनुभाग के उदीरक जीवों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण है।
क्यों ये आवली का असंख्यात का भाग लिया है? असंख्यात क्यों करेंगे? तो भी
जघन्य काल एक समय लिया और उत्कृष्ट काल आवली का असंख्यात का भाग।
वहाँ पे हमने
वहाँ पर एक जीव की अपेक्षा भी आवली का असंख्यात का भाग ही देखा था, तो उसको भी गुणा करेंगे इतने जीवों से तो भी वो आवली का असंख्यात, फिर भी आवली का असंख्यात का भाग होगा यथा योग्य, क्योंकि वो असंख्यात गुणा होगा तो भी अभी अवली का असंख्यात का भाग ही है।
पर अनंत गुणानि में इतना सर्वदा लिया है
हमेशा अनंत, हमने देखा था अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में होती रहेगी हर एक जीव की। अनंत गुण वृद्धि और अनंत गुण हानि तो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त चलती है, हानि भी वृद्धि भी, उसका अंतर भी उतना ही है, यानी उसमें तो हमेशा ही जीव पाए जाएंगे। इसी प्रकार ये जो बताया ना अनंत गुण वृद्धि हानि हमेशा होगी और अन्य पद आवली का संख्या उत्कृष्ट काल। इसी प्रकार सब नारकी सब पंचेंद्रिय तीर्यंच और सामान्य देवों से लेकर अपराजित विमान तक के देवों में जानना चाहिए, इसी प्रकार मनुष्यों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्य पद का भंगो उप के समान है, यानी वो एक स्व है इसमें जो संख्या समय है, अन्य में वो नहीं होगा। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नियम में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है इनमें अवस्थित अनुभाग के उदीरकों का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल संख्यात समय।
नहीं, अवस्थित का भी हो सकता है ना, संख्यात जीव करेगा और संख्यात समय, तो संख्यात गुण ही हो जाएगा ना।
देखो ऊपर क्या लिखा था, अवस्थित वाले
भोग में भी हमने देखा ना, अवस्थित का एक समय से लेकर संख्यात समय होता है, तो यहाँ पे
ओ की अपेक्षा तो सर्वदा बताए।
नहीं, अवस्थित का
एक जीव की अपेक्षा आप बता रहे हैं।
हाँ, एक समय से लेकर संख्यात समय,
एक जीव की अपेक्षा संख्यात समय तक मैक्सिमम। हाँ,
और यहाँ पे संख्यात जीव करेगा तो संख्यात समय ही हो जाएगा।
हाँ, इसीलिए। हाँ, परंतु कालानुगम नाना जीवों की अपेक्षा अवस्थित का क्या काल था ना, ओघ में
संख्यात समय,
ओघ में नाना जीवों की अपेक्षा
अवस्थित का एक समय से लेकर संख्यात समय होता है।
कहाँ है शेष पद अनुभाग के उदीरक जीवों का काल सर्वदा है, संख्या समय अवक्तव्य के लिए लिखे और हम अवस्थित की बात कर रहे हैं।
नहीं, उत्कृष्ट काल संख्या समय योग से बताए।
कहाँ?
कालानुगम की अपेक्षा ये 31 पेज
कहाँ लिखा है? आप अवक्तव्य की पूछो देख रहे
हैं। नहीं, ये दूसरी लाइन में अवस्थित पद का जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्या समय एक जीव की अपेक्षा,
एक जीव की अपेक्षा की कहाँ बात चल रही है? नाना हाँ। जीवों की अपेक्षा
नहीं, अभी मनुष्य गति की बात चल रही है ना।
नहीं, मैंने पूछा ओघ में क्या देखा और मनुष्य में क्या है, ये मेरा
ओघ में तो आपने देखा सर्वदा है।
सर्वदा वही बात चल रही है। ओघ से अवस्थित वाला जो काल है नाना जीवों की अपेक्षा वो सर्वदा है, मनुष्यों में अवस्थित के भी संख्या समय, क्योंकि एक जीव के लिए संख्या समय तो संख्या जीवों के लिए संख्या समय। इसी प्रकार सर्वार्थ सिद्धि के देवों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है इनमें अवक्तव्य पद नहीं है। मनुष्य पर्याप्तकों में अनंत गुण वृद्धि और अनंत गुणहानि अनुभाग के उदीरकों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। नाना जीवन की अपेक्षा बात चल रही है। वो हानि करके अन्य हानि हुई, फिर वो विशिष्ट हानि हुई, मर गया, तो वहां ये घटित हो सकता है। नहीं तो आप कहेंगे हर अंतर्मूर्त में तो हो ही रहा है, मनुष्य पर्याप्तकों में भी काल उसका अंतर्मूर्त देखा था अनंत गुण वृद्धि हानि का, परंतु यहाँ सांतर मार्गना होने के कारण वो विशिष्ट हानि या वृद्धि में आया और मर गया, अन्य अन्य जीव दूसरा कोई नहीं आया है, ऐसे जीव लेना वहां, और कोई ना कोई करता रहेगा तो उत्कृष्ट काल पल्ले के, क्योंकि एक जीव अंतर्मूर्त तक कर सकता है तो ये पल्ले का असंख्या का भाग होगा। शेष पद अनुभाग के उदीरकों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अवली के असंख्या से भाग प्रमाण है।
यह अवस्थित का भी असंख्या से अवली का असंख्या से
वहाँ, हाँ, क्योंकि असंख्यात जीव है ना वहाँ।
हाँ, असंख्यात इंटु संख्या समय,
इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। अब हम अंतर देखेंगे, नाना जीवन की अपेक्षा अंतरानुगम 11 नंबर, ये वृद्धि नंबर 11। अंतरानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओव और आदेश। ओव से अवक्तव्य अनुभाग के उदीरकों का जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल वर्ष पृथक्त्व प्रमाण है। उपशम श्रेणी का अंतर नाना जीवन की अपेक्षा। शेष पद अनुभाग के उदीरकों का अंतरकाल नहीं है, हमने यहाँ देखा था काल में वो सर्वदा है, इसी प्रकार तिर्यंचों में जानना चाहिए, यानी तिर्यंचों में वो सदाकाल गतित होगा। इतनी विशेषता इनमें अवक्तव्य पद नहीं है। आदेश से नारकियों में अनंत गुण वृद्धि और अनंत गुणहानि अनुभाग के उदीरकों का अंतरकाल नहीं है, निरंतर है। ये तो हमने सर्वदा काल में सर्वदा देखा था। शेष पद अनुभाग के उदीरकों का जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है। ओह,
ये बहुत लंबा काल है।
हाँ। और यहाँ काल कितना देखा था
एक समय
अन्य पदों का नारकियों में
एक समय से लेकर आवली का अंतर
आवली का संख्या का भाव
और तो भी इतना अंतर पड़ सकता है।
ये लगातार आएंगे तो आवली का संख्या का भाव और नहीं कोई करेगा तो असंख्यात लोग। इसी प्रकार सब नारकी यानी वो कॉमनली अनंत गुण वृद्धि और अनंत गुण हानि है, ये समझ में आती है बात। हाँ? अनंत गुणा हो जाता है। हाँ, रेंज मोटी है, बड़ी है, मोटी है। इसी प्रकार सब नारकी सब पंचेंद्रिय तिर्यंच और सब देवों में जानना चाहिए। इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए। इतनी विशेषता इनमें अवक्तव्य पद का भंग उप के समान है, यानी उत्कृष्ट अंतर जो वर्ष पुसत्व वाला, यानी चारों ही गतियों में शेष पद जो है
असंख्यात लोक।
हाँ, अब ये कौन से चारों गति में तिर्यंचों में पंचेंद्रिय लेना है, क्योंकि एकेंद्रियों में तो हमेशा ही पाए जाएंगे सभी पद। और ये जो अनंत गुण वृद्धि अनंत गुण हानि तो उसका अंतर नहीं है, निरंतर है। और जो शेष पद है उसका जघन्य अंतर एक समय नाना जीवन की अपेक्षा और उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक प्रमाण है।
ठीक है, सम्यक दृष्टि को भी अनंत गुण वृद्धि और अनंत गुण हानि होती है।
हाँ, होती है ना, बताए ना।
नहीं, होती है,
सर्वार्थ सिद्धि तक के होती है। और यहाँ मूल प्रकृति बात चल रही है, एक एक प्रकृति के बाद कहाँ क्या होगा वो तो बाद में ही करेंगे। यानी जनरली जो वृद्धि हानि चल रही है वो अनंत गुणा में ही होती रहती है और वो उसका काल भी अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त बताया। मुझे कल ऐसा विचार आया, कुछ इससे लागू होता ही नहीं होता पता नहीं है, परंतु अनंत गुणी वृद्धि हानि जो चल रही है उसकी अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में, हम ऐसा भी देखते हैं ना, कोई भी परिणाम जो अंतर्मूर्त से अधिक नहीं टिकता है। शुभोपयोग अशुभोपयोग में भी हमने लगाया था। और यहाँ तो हम संकलेश विशुद्धि के बारे में कहेंगे तो उसकी वृद्धि हानि हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि ये तो सम्यक दृष्टि को मिथ्या दृष्टि को दोनों को बताया था, कल हमने पढ़ा था इसको, स्वामित्व में देखा था। हाँ, क्योंकि अनंत स्पर्धक है तो थोड़ा अनुभव कम होता तो अनंत गुणा हो जाता है। यहाँ उदीरणा में भी अनंत सत्ता की, केवल सत्ता की अपेक्षा नहीं लगाना है। सत्ता की अपेक्षा इतना चेंजेस होने में टाइम भी लग सकता है,
काल तक इतनी हानि होती रहेगी।
उदय रूप है, उदीरणा में क्या लेना,
उदय रूप जो हो रहा है,
यानी उसके जो मोहनीय के जो उदय रूप जो है जितना अनुभाग है उसका निमित्त भी बनेगा उसके राग द्वेष के परिणाम के साथ काल में, यानी उसके तो वृद्धि हानि चलती रहेगी।
जो उदीरणा में जो वृद्धि हानि होती रहेगी वही वृद्धि हानि सत्ता की अपेक्षा भी हो सकती है, नहीं, क्योंकि ऊपर जो निषेक पड़े है वहाँ पे भी इतनी हानि होगी ना, वहाँ पे जो प्रत्येक निषेक में जो वृद्धि हानि होती है वो यहाँ पे जितना कम होगा वो ऊपर भी कम होगा,
भले सर्वत्र होगा।
हाँ, वो संक्रमण की अपेक्षा वो भी
संक्रमण यहाँ उदय में आने की अपेक्षा बात चल रही
है। नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ,
वहाँ भी वृद्धि हानि तो होगी, तो कौन सी वृद्धि, अभी हम तो पढ़ चुके हैं अनुभाग विभक्ति में पढ़ा है ना, कितना याद है?
कुछ नहीं याद है।
आपका होमवर्क बढ़ता चला जाएगा। मनुष्य अपर्याप्तकों में अनंत गुण वृद्धि और अनंत गुणहानि अनुभाग के वीरकों का जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण है। मार्गणा का अंतर शेष पद अनुभाग के वीरकों का जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल असंख्यात लोग इनमें भी इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। वहां तो सब देवों में भी ऐसे ही घटित किया था। अब आगे 12 नंबर, भावानुगम की अपेक्षा सर्वत्र औदयिक भाव है, वृद्धि नंबर 12। अब लास्ट अल्प बहुत्व अनुगम, वृद्धि नंबर 13 युनियोग द्वारे। अल्प बहुत्वानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओह और आदेश। ओह से अवक्तव्य अनुभाग के उदीरक जीव सबसे स्तोक है, वो तो संख्यात है। उनसे अवस्थित अनुभाग के उदीरक जीव अनंत गुण है तो अनंत। उनसे अनंत भाग वृद्धि अनंत करना, अनंत भाग हानि, भाग की बात चल रही है, अनंत न रह गया बीच। अनंत भाग वृद्धि और अनंत भाग हानि अनुभाग के उदीरक जीव असंख्यात गुणे हैं। उनसे असंख्यात भाग वृद्धि और असंख्यात भाग हानि अनुभाग के उदीरक जीव असंख्यात गुणे हैं। उनसे संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग हानि अनुभाग के उदीरक जीव असंख्यात गुणे हैं। उनसे संख्यात गुण वृद्धि संख्यात गुणहानि अनुभाग के उदीरक जीव संख्यात गुणे हैं। यह मात्र संख्यात गुण आया। फिर असंख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुणहानि अनुभाग के उदीरक जीव असंख्यात गुणे हैं। उनसे अनंत गुणहानि अनुभाग के उदीरक जीव असंख्यात गुणे हैं और उनसे अनंत गुणवृद्धि अनुभाग के उदीरक जीव विशेष अधिक है, वृद्धि में विशेष अधिक लिए। इसी प्रकार सब नारकी, सब तीर्यंच, मनुष्य अपर्याप्त और सामान्य देवों से लेकर अपराजित विमान तक के देवों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्य पद नहीं है, यानी जो असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा तो वहां भी घटित होगा। सामान्य मनुष्यों में अवक्तव्य अनुभाग के उदीरक जीव सबसे स्तोक है। उनसे अवस्थित अनुभाग के उदीरक जीव असंख्यात गुणे हैं। शेष भंग उभो के समान। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नियम में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि संख्यात गुना करना चाहिए, यानी सबसे कम अवक्तव्य फिर अवस्थित वाले संख्यात गुना कहेंगे। इसी प्रकार सर्वा सिद्धि में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्य पद नहीं है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। यहाँ पर बंध समुत्पत्ति आदि के भेद से तीन प्रकार के अनुभाग उदीर्णा स्थानों की प्ररूपणा का भंग अनुभाग संक्रम के समान है। ये स्थान यानी अलग अलग उसके स्थान होंगे, उदीर्णा के अलग अलग स्थान। इतनी विशेषता है कि सर्वत्र अनुभाग सत्कर्म स्थान के अनंत वे भाग प्रमाण ही उदीर्णा स्थान होता है, कारण सुगम। इस प्रकार मूल प्रकृति अनुभाग उदीर्णा समाप्त है। मुनियों की इन जनरल बात की अभी तक, अब एक एक प्रकृति की अलग अलग बात करेंगे। उत्तर पैड़ी अनुभाग उदीरणम वत्त इस्सामो। अब उत्तर प्रकृति अनुभाग उदीरणा को बतलाते हैं, उदरीना हुआ है उसको उदीरणा करना। सूत्र के अर्थ में मूल प्रकृति अनुभाग उदीरणा का विशेष व्याख्यान करने के बाद यथा अवसर प्राप्त उत्तर प्रकृति अनुभाग उदीरणा को बतलाते हैं, इस प्रकार यह प्रतिज्ञा वाक्य है। आचार्यों की पद्धति है जो आने वाला विषय है उसको पहले बता देते हैं। मंगलाचरण में भी आता है ना, वच्छ महाधियार महम, वैसे याद है ना, वच्छम कहे कहीं कहीं वच्छा में आता है, यानी वो क्या बताने वाले वो पहले बताते हैं। वच्छम वेदक महाधियार महम, वेदक नाम का महाअधिकार मैं कहूंगा। देखो अभी उसके विषय में ये 24 ऊपर तथम तथ इमानी 24 अनियोग दाराणी सन्ना सव उदीर्णा एवं जाव अप्पा बहुवेत्ति भुजगार पद निखेव वड्ढी थानाणी च। उसके विषय में ये 24 अनियोग द्वार हैं, संज्ञा और सर्व उदीर्णा से लेकर अल्प बहुत्व तक बहुत्व हुआ अल्श हुआ। बहुत्व तथा भुजगार पदनिक्षेप वृद्ध्यर्थ स्थान, यानी संज्ञा से लेकर हमने वहां पर भी देखी थी घाती संज्ञा वगैरह वगैरह और स्थान संज्ञा, वहां से लेकर अल्प बहुत्व तक। हमने पहले कौन सा देखा था मूल प्रकृति में, कितने देखे थे? 23 देखे थे। यहाँ सन्निकर्ष 100 होगा और भुजगार पदनिक्षेप वृद्धि और एक 100 है स्थान, अलग अलग उसके जो वेरिएशंस हो गए। नहीं वो वहां पर भी 3 तो एक्स्ट्रा थे, भुजगार पदनिक्षेप और वृद्धि वाले वहां पर भी थे और यहाँ स्थान वाली प्ररूपना एक्स्ट्रा है। यहाँ ऊपर भी थी स्थानों का भंग अनुभाग संक्रम के समान है कहकर उसको ऊपर अभी बताया था लास्ट पैराग्राफ मूल प्रकृति में। अब हम पढ़ेंगे आगे 37 पृष्ठ पर। अब इन अनियोग द्वारों का अवलंबन लेकर यथाक्रम उत्तर प्रकृति अनुभाग उदीरणा की प्ररूपणा करते हुए संज्ञानुगम का ही सर्वप्रथम कथन करने के लिए उत्तर सूत्र प्रबंध को कहते हैं। तथ पूर्वम गमणिज्जा दुविहा सन्ना घाई सन्ना ठान सन्ना च। वहां सर्वप्रथम घाती संज्ञा और स्थान संज्ञा यह दो प्रकार की संज्ञा जानने योग्य है, गमणिज्जा जानने योग्य है। वहां उन अनियोग द्वारों में पूर्वम अर्थात सर्वप्रथम, गमणिज्जा अर्थात मार्गण करने योग्य है, घाती संज्ञा और स्थान संज्ञा यह दो प्रकार की संज्ञा। वहां जो घाती संज्ञा है वह सर्वघाती और देशघाती के भेद से दो प्रकार की है। लता समान आदि स्वभाव के भेद से भिन्नता को प्राप्त हुई स्थान संज्ञा 4 प्रकार की, हमने देखे थे उसमें 4 भेद बताए, लता भाग वाले, दारू भाग वाले, अस्थ भाग वाले और शैल भाग वाले, उसको स्थान कहेंगे, 4 प्रकार के स्थान। इस प्रकार यह दो प्रकार की संज्ञा सर्वप्रथम यहाँ जानने योग्य है, अन्यथा अनुभाग विषयक निश्चय नहीं हो सकता। उतना ही बताएंगे ये सर्वघाती है कि देशघाती उदीर्ण, किस रूप में उसका उदय हो रहा है, सर्वघाती रूप से कि देशघाती रूप से उसको बताएंगे, या स्थान की अपेक्षा कहेंगे चतुस्थानीय के त्रिस्थानीय के द्विस्थानीय के एक स्थान। ताओ दो भी एक दो वत्त इस्सामी, उन दोनों ही संज्ञाओं को एक साथ बतलावेंगे, उन दोनों ही संज्ञाओं को एक साथ ही बतलावेंगे, क्योंकि पृथक पृथक कथन करने पर ग्रंथ विस्तार का प्रसंग उपस्थित होता है। तम जहां मिच्छत्त बारस कसायाणम अनुभाग उदीरणा सव्वघादि, यथा मिथ्यात्व और बारह कषायों की अनुभाग उदीरणा सर्वघाती है। ये कौन से बारह कषाय लेना? हाँ, संज्वलन को छोड़ा। संज्वलन में भी सर्वघाती तो होगी, परंतु इसमें मात्र सर्वघाती है। उसमें दोनों प्रकार के होंगे, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को तो संज्वलन का उदय उदीर्ण है, वो सर्वघाती है। इसलिए लिया कि यहाँ इनका ऐसा ग्रुप किया है, मात्र सर्वघाती है। संज्वलन को अलग बताएंगे, सर्वघाती भी है, देशघाती भी है, क्योंकि इन प्रकृतियों की अनुभाग उदीर्णा से सम्यक और संयम गुणों का पूरी तरह से विनाश देखा जाता है। किसका पूरा घात करते हैं? सम्यक और संयम गुणों का पूरी तरह से घात होता है। शंका, प्रत्याख्यान कषायों की उदीर्णा के होने पर भी देश संयम की प्राप्ति होती है, इसलिए उनका सर्वघातीपना नहीं बनता। क्या कहते हैं? पांचवें गुणस्थान में किसका उदय चल रहा है?
प्रत्याख्यान
और
संज्वलन।
तो प्रत्याख्यान की उदीर्णा चल रही है, फिर भी देश संयम की प्राप्ति तो होती है, ये प्रश्न है। समाधान, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सकल संयम का अवलंबन लेकर उनके सर्वघातीपने का समर्थन किया। अपेक्षा लगाई ना, संयम का पूरा घात करते हैं तो उसको भी वहां पर सर्वघाती कहेंगे। इस प्रकार इस सूत्र द्वारा मिथ्यात्व करना उसको तो घ हुआ है। मिथ्यात्व और बारह कषायों की उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य के भेद से भिन्नता को प्राप्त हुई अनुभाग उदीर्णा का सर्वघातीपना सामान्य रूप से कहा, क्योंकि वहां प्रकारांतर चाहिए, प्रकारांतर नहीं, प्रकारांतर संभव नहीं है। क्या कहा, समझ में आया कुछ? मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अनुभाग का उदय हो, उदीर्णा हो, अभी उदीर्णा की बात है ना, उदय चल रहा है, या अनुत्कृष्ट हो
तो सर्वघाती,
या जघन्य है या अजघन्य भी है तो जघन्य में जघन्य भी वो कैसा होगा?
सर्वघाती
है, क्योंकि मिथ्यात्व का उदय कितना भी सूक्ष्म मिथ्यात्व क्यों न हो, सम्यक्त्व का पूरा घात करता है। ऐसा नहीं होगा मिथ्यात्व का उदय भी चल रहा है और सम्यक्त्व भी बना रहे, तो उसके उत्कृष्ट हो या अनुत्कृष्ट हो, जघन्य हो या अजघन्य हो, उदीर्णा की बात चल रही है, वो सर्वघाती ही है, ही लगाया।
तो क्या प्रत्याख्यान का जो पांचवें गुणस्थान में उदय है, खाली पांचवें गुणस्थान में, वहाँ पे उसका
अभी अपेक्षा बता दिए,
नहीं अपेक्षा बताए, पर वहाँ पे क्या देशघाती का भी उदय हो सकता है? क्योंकि सकल संयम तो नहीं है, प्रदेश संयम तो है।
वो प्रकृति कौन सी पहले ये नक्की करो।
वो तो सर्वघाती प्रकृति है।
सर्वघाती प्रकृति में देशघाती स्पर्धक होते हैं?
नहीं होते।
बात खत्म हुई ना, अभी अपेक्षा क्यों, वहाँ सूक्ष्म क्यों कहा था संयम असंयम को, तो वो अपेक्षा लगा के बताया। देश संयम का घात नहीं हो रहा है और प्रत्याख्यान आवरण तो उदय चल रहा है वहां पर, फिर भी वो मंद उदय चल रहा है, उस अपेक्षा वहां लगा लिया, परंतु संयम का तो पूरा घात ही हो रहा है। प्रत्याख्यान का अर्थ ही क्या है? प्रत्याख्यानावरण पूरा शब्द है, प्रत्याख्यान ने पूर्ण त्याग, बिल्कुल नहीं होने देता,
पूर्ण त्याग नहीं होने देता।
उस उसके नाम ही में उसका स्वरूप बताया। प्रत्याख्यानावरण कहते ही इसको है जो सकल संयम नहीं होने दे। तो कहते प्रकारांतर सर्व संभव नहीं है ने, उसमें देशघाती बिल्कुल नहीं संभव। उसका उत्कृष्ट हो अनुत्कृष्ट हो, जघन्य हो अजघन्य हो, कहीं भी हो
सर्वघाती ही,
तो सर्वघाती ही है। अन्य कोई प्रकार उसमें संभव नहीं है, अन्य प्रकार यानी देशघातीपना उसमें संभव नहीं है। अब दुठानिया तिठानिया चौठानिया वा वह द्विस्थानीय है, त्रिस्थानीय और चतुस्थानीय है। क्या वह है ने उनकी उदीरणा, अभी जो बताए ना विख्यात और बारह कषाय उनकी जो हमने देखी है उदीरणा, अनुभाग उदीरणा,
द्विस्थानीय
त्रिस्थानीय। देखो घाती अघाती अलग नाम है उसके, सॉरी अघाती नहीं देशघाती, सर्वघाती और देशघाती, वो घाती संज्ञा हुई। अब उसी को स्थानों की बात में बताना है तो ये कैसी होगी, वह द्विस्थानीय त्रिस्थानीय और चतुस्थानीय। वो किसी भी स्थानीय क्यों ना हो तो उसको क्या है, सर्वघातीपना ही है, एक स्थानीय तो होगी ही नहीं वो, क्योंकि मिथ्यात और हाँ अनुभाग उदीरणा, मिथ्यात और बारह कषाय उनकी अनुभाग उदीरणा द्विस्थानीय है, त्रिस्थानीय और चतुस्थानीय। चतुस्थानीय उत्कृष्ट भी हो सकती है अनुत्कृष्ट भी हो सकती, बाकी द्विस्थानीय त्रिस्थानीय अनुत्कृष्ट ही होगी। अब द्विस्थानीय में जघन्य लगा सकते हैं और द्विस्थानीय अजघन्य भी होगी, त्रिस्थानीय चतुस्थानीय तो अजघन्य ही होगी। तो कहते क्योंकि मिथ्यात और बारह कषायों की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा चतुस्थानीय देखी जाती है, तथा उन्हीं की अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा चतुस्थानीय त्रिस्थानीय और द्विस्थानीय देखी जाती है। मैक्सिमम टॉप मोस्ट है उसको उत्कृष्ट कहेंगे, वो तो चतुस्थानीय होगी होगी शैल वाली, परंतु जो अनुत्कृष्ट है वो भी शैल वाले हो सकते हैं ना। जो टॉप मोस्ट उत्कृष्ट अनुभाग वाला नहीं लेंगे, थोड़ा कम है तो उसको अनुत्कृष्ट कहेंगे। ये तो हो गया मिथ्यात्व की बात, यानी एक एक प्रकृति पर उसकी संज्ञा बताएंगे, घाती में सर्वघाती या देशघाती वो कहेंगे, और फिर उसके कितने स्थानीय है वो बताएंगे। सम्मतस्य अनुभाग उदीरणा देशघाती, सम्यक्त्व की अनुभाग उदीरणा देशघाती है, क्योंकि ये प्रकृति देशघाती, उसके स्पर्धक भी देशघाती ही है। क्योंकि जिस प्रकार मिथ्यात्व की उदीरणा से सम्यक्त्व, सम्यकत्व हुआ है सम्यक्त्व, एक को हलंत करो या खोड़ो खोड़ो, जिस प्रकार मिथ्यात्व की उदीरणा से सम्यक पर्याय का अत्यंत उच्छेद होता है यानी पूरा नाश होता है, उस प्रकार सम्यक्त्व की उदीरणा से सम्यक्त्व संज्ञा वाली जीव पर्याय का अत्यंत उच्छेद नहीं होता। अब ये जो उसका उसके अनुभाग उदीरणा है वो कैसी है, पहले तो वो तो देशघाती बता दिया, वो घाती संज्ञा हुई, अब उसी को स्थान संज्ञा कहेंगे, तो वो कैसी होगी, ये ठानियावा दुठानियावा, क्योंकि दारू वाला भी अनंतवा भाग जो है दर्शन मोहनीय का,
वो देशघाती
दर्शन मोहनीय में लता दारू अस्थि और शैल चार, उसमें से मिथ्या तो में शैल वाले भी है, अस्थि वाले भी है और दारू वाले भी है। दारू में अनंत बहुभाग और अनंतवा भाग करना, अनंतवा भाग वो देशघाती में ज्यादा रहते, अनंत बहुभाग सर्वघाती, अनंत बहुभाग में ही वो समय मिथ्या तो रहेगा, उसके नीचे थोड़े पात्र, और जो सम्यक प्रकृति है वो आयदर द्विस्थानीय और एक स्थानीय, दोनों प्रकार के अनुभाग हो गए। यानी उसमें जो दारू वाले हैं उसको द्विस्थानी कहेंगे, लता वालों को एक स्थानीय कहेंगे। तो कहते हैं एठानीय वा दूठानीय वा, वह एक स्थानीय और द्विस्थानीय है, क्योंकि सम्यक्त्व की जघन्य अनुभाग उदीर्णा एक स्थानीय देखी जाती है तथा उसकी उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा द्विस्थानीय देखी जाती है। सम्मा मिच्छत्तस्य अनुभाग उदीर्णा सर्वघादी विठानिया, हर जगह दुठानिया लिखा, यहाँ विठानिया लिखा।
विठानिया और दुठानिया,
हर जगह दुठानिया लिखा है, यहाँ विठानिया लिखा है। पीछे पीछे है ना इसका सूत्र, पृष्ठ 38। दिया ही नहीं ना, 11वीं पुस्तक का आगे लिखा होगा ना, भाग 11 372 पर है, उसमें 38 की बात आगे आई क्या? हाँ है, 12 दुठाने तिठाने चौठाने सम्मतस्य देशगादि दुठानी विठानिया ही शब्द है, विठानिया। पेज नंबर मुझे 372 पर मिला, 72 में मैंने फुटनोट देखी, उसमें पृष्ठ 38 था और उसको 12 नंबर दिया था, इसलिए मैंने 12 नंबर कहाँ लिखा है वो देखा। उसमें सम्मा मिच्छत्तस्य अनुभाग उदीर्णा सर्वघाती विठानिया, द्यु का बदले विठानिया विठानिया कहते हो गए। अब यहाँ पढ़ेंगे उसका अर्थ, वही तो, वही मूल सूत्र में भी है, उसी को हमें कंफर्म करना है कि विठानिया ही लिखा है कि कुछ अलग से है। आगे पढ़े, सम्यक मिथ्यात्व की अनुभाग उदीर्णा सर्वघाती और द्विस्थानीय है, क्योंकि वो कौन से है? दारू अनुभाग वाले, दारू का जो सर्वघाती दारू वाले जो है उसमें से लोर अनंतवा भाग जो है वो सम्यक मिथ्यात्व की है। स्पर्धक, हाँ, जहाँ देशघाती समाप्त होती है, सम्यक प्रकृति का जहाँ अंत होता है उसके ऊपर के जो स्पर्धक है वो सम्यक मिथ्यात्व के है, और फिर उसके ऊपर मिथ्यात्व के है। शंका, इसका सर्वघातीपना कैसे है? उसका समाधान, मिथ्यात्व की उदीर्णा से जिस प्रकार सम्यक्त्व गुण का निर्मूल विनाश होता है उसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व की उदीर्णा से भी सम्यक्त्व संज्ञा वाले जीव गुण का निर्मूल विनाश देखा जाता है। परंतु यह द्विस्थानीय ही होती है, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व के अनुभाग में द्विस्थानीयपने को छोड़कर प्रकारांतर संभव नहीं है, क्योंकि वो तो एकमात्र दारू वाले है तो वो द्विस्थानीय ही है। चतुसंजलन की वेदानम अनुभाग उदीर्णा देशघाती वा सौवघाती वा, चार संज्वलन और तीन वेदों की चाहिए, वेदों को हुआ है ना, चार संज्वलन और तीन वेदों की अनुभाग उदीर्णा देशघाती और सर्वघाती भी है।
क्या तीनों वेद?
हाँ, क्योंकि इनकी जघन्य अनुभाग उदीर्णा में देशघातीपने का नियम देखा जाता है। तथा इनकी उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा में नियम से सर्वघातीपना देखा जाता है। तथा इनकी
उदीर्णा तो जब भी उदय तभी लेते हैं ना हम लोग।
उदीर्णा का अर्थ ही है
जो उदय,
वो घटकर उदय में आना। हाँ। किस रूप में उदय में आता है?
तो एक वेद का उदय होगा तो बाकी का दो का तो उदय होगा ही नहीं,
एट टाइम एक का ही होगा ना।
हाँ, तो वहाँ पे दो में सर्वगति उदीर्णा ऐसे ले सकते हैं।
कैसे उसका उदय नहीं तो उदीर्णा कैसे कहेंगे?
अच्छा, जो उदय है वही अपेक्षा ले सकते हैं ना, वही मिल सकते।
उदीर्णा कहते ही उसको है जिसका उदय चल रहा है। जिस समय एक वेद का उदय उदीर्णा है वहाँ अन्य वेद का कुछ नहीं वहाँ पर।
नहीं नहीं, मैंने क्यों पूछा, क्योंकि उदय है तो वहाँ पे उसका देशघाती पना होता है कि सर्वघाती पना होता है? जहाँ उदय नहीं
है, बताया है ना, दोनों है वहाँ पर।
जो वेद का उदय चल रहा है वहाँ देशघाती पना है
क्या? क्या आवरण वाला है क्या? वेद का कार्य क्या है? वेद का आवरण करने का है। आपको देशघाती ने उसको घात कर रहा है।
नहीं, उदय भी चल रहा है।
हाँ। और
इसीलिए मैंने पूछा।
देखो पढ़ेंगे आगे। इनकी अजगण्य अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णाओं में दोनों में ही देशघातीपना और सर्वघातीपना उपलब्ध होता है। अजघन्य और अनुत्कृष्ट में दोनों में ही वो देशघातीपना सर्वघातीपना दोनों हो गए। हाँ, मगर ये था है तो सारे घाती कर्म। हाँ, यानी वो किस फॉर्म में है, उसके कौन से अनुभव, क्योंकि वो उसके अनुभव कहाँ किसका ज्यादा है, सर्वघाती कहाँ उसका, यानी उत्कृष्ट अनुभव है उसका, अनुभाग सब सबसे अधिक है, इस तरह से लिया। चल में हमारी डेफिनेशन क्या है? शैल, अस्थि और दारू के बहुभाग है
वो सर्वघाती,
वो सर्वघाती, और नीचे के है वो
देशघाती।
वैसा इसका अर्थ लगा है। उक्त कथन का तात्पर्य कि मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान तक तो इन कर्मों की अनुभाग उदीर्णा संकलेश और विशुद्धि के वश से सर्वघाती और देशघाती दोनों प्रकार की होती है। संकलेश के वश से सर्वघाती होगी, विशुद्धि के वश से देशघाती होगी। यानी हम कहीं ना उसका माइल्ड उदय होगा या तीव्र उदय, इस तरह से उसका विचार करें। तथा संहिता संयत गुणस्थान से लेकर आगे सर्वत्र देशघाती होती है, इसको देशघाती करण भी कहते हैं। वो करण होता है ऊपर श्रेणी में, वो अलग। इनका देशघातीपना तो देश संयम गुणस्थान से ही हो जाता, क्योंकि इनकी सर्वघाती उदीर्णा का संयमा संयम आदि गुणरूप परिणामों के साथ विरोध है। यानी पूर्व अवस्था में जैसा तीव्र उसका उदय होता होगा अनुभाग का, ऐसा तीव्र अनुभाग का उदय यहाँ नहीं है, तो उसको हम देशघाती कहें, मंद उदय। अब यहीं पर स्थान संज्ञा का उदाहरण करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। एक ठानिया वा दू ठानिया ती ठानिया चौ ठानिया वा, वो एक स्थानीय है, द्विस्थानीय है, त्रिस्थानीय और चतुस्थानीय है, क्योंकि अंतरकरण करने पर इनकी अनुभाग उदीर्णा नियम से एक स्थानीय देखी जाती है। नीचे सर्वत्र गुणस्थान प्रतिपन्न जीवों में द्विस्थानीय पने का नियम देखा जाता है। तथा मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय और चतुस्थानीय भेद से परिवर्तमान अनुभाग की उदीर्णा देखी जाती है। परिवर्तमान है वो पलटकर उसी में आते रहते हैं, बीच बीच में पलटते रहते हैं, वो परिवर्तमान। क्या कहा? अंतर करने के बाद एक स्थानीय हो जाती है। हाँ, श्रेणी में अंतरकरण करता है वहां की बात। और गुणस्थान प्रतिपन्न जीवों में यानी दूसरे गुणस्थान से लेकर ऊपर द्विस्थानीय पने का नियम है।
तो ये 2 से 9 तक देना है।
गुणस्थान प्रतिपन्न किसको कहा? क्योंकि वो काल वैसे थोड़ा है ना, संयत समय दृष्टि होकर उसमें आता है। हाँ, गुणस्थान प्रतिपन्न यानी ऊपर के गुणस्थान वाले जी
2 से 9 के पहले पास।
अभी जब तक अंतर नहीं किया है तो उसमें द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय और चतुस्थानीय के भेद से परिवर्तमान अनुभाग की उदीर्णा देखी जाती है। नीचे ने अंतरकरण के नीचे, परंतु मिथ्या तो गुणस्थान के ऊपर। देखो, मिथ्या तो गुणस्थान तो है ही अनादि से। गुणस्थान प्रतिपन्न उनको कहते जो ऊपर के गुणस्थानों में कभी आते हैं। क्षण नो कसायाना मनोभाव उदीर्णा देश घाती वा सव घाती वा, छह नौ कषायों की अनुभाग उदीर्णा देशघाती और सर्वघाती है। हमने ये 9 कषायों को देशघाती में डाला था, ये 4 देखा था तभी।
तो यहाँ पे ये
वहां भी 2 जगह 2 अलग अलग कथन थे। यहाँ तो सर्वघाती देशघाती दोनों बताए। शायद वो बनते पता नहीं क्या है, क्योंकि असंयत समय दृष्टि प्रभृति नीचे के गुणस्थानों में यानी चौथे से लेकर नीचे के सर्वत्र इनके अनुभाग उदीर्णा की देशघाती और सर्वघाती भाव से प्रवृत्ति देखी जाती है। तथा संयता संयत गुणस्थान से लेकर अपूर्वकरण गुणस्थान तक देशघाती रूप से इनकी उदीर्णा की प्रवृत्ति का नियम देखा जाता है। यानी संयता संयत गुणस्थान से वो देशघाती हो जाते हैं। दुठानिया वा तीठानिया वा चौठानिया वा, वह यानी इनकी जो उदीर्णा है अनुभाग उदीर्णा, वो
छनो
कसाई की द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय और चतुस्थानीय है। क्योंकि संयता संयत आदि आगे के गुणस्थानों में 6 नौकषायों की अनुभाग उदीर्णा के देशघाती पने और द्विस्थानीय पने का नियम देखा जाता है। नीचे के गुणस्थान प्रतिपन्न जीवों में भी देशघाती और सर्वघाती भेद रूप द्विस्थानीय अनुभाग उदीर्णा पाई जाती है। यानी वो दारू वाले है परंतु वो सर्वघाती देशघाती दोनों ही प्रकार पाए जाएंगे वहां। तथा मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय और चतुस्थानीय भेद रूप सभी अनुभाग उदीर्णा संभव है। अब 4 संज्वलन और 9 नौकषायों की सामान्य रूप से परिणाम प्रत्ययवश सब गुणस्थानों और सब जीवस्थानों समासों में देशघाती उदीर्णा संभव है, क्या कहते हैं, चार संज्वलन और नौ नौकशायों की सामान्य रूप से परिणाम प्रत्ययवश सभी गुणस्थानों या सभी जीव समासों में देशघाती उदीर्णा संभव है, यह कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। हाँ, क्योंकि उदय जिसका है उसी की उदीर्णा होगी उस रूप में। चतुसंजलन नवनो कसायान मनुभाग उदीर्णा एन्दिये भी देशघाती होई, चार संज्वलन और नौ नौकशायन की अनुभाग उदीर्णा एकेंद्रीय जीव में भी देशघाती होती है। केवल संयत आदि उपरिम गुणस्थानों में ही प्रकृत कर्मों की देशघाती उदीर्णा नहीं होती, किंतु असंयत सम्यक दृष्टि प्रभृति संगी मिथ्या दृष्टि गुणस्थान तक के इन गुणस्थानों में भी विशुद्धि के काल में देशघाती उदीर्णा का प्रतिषेध नहीं है। केवल संगी प्रायोग्य विशुद्धि से ही देशघाती उदीर्णा होती है, सो बात नहीं है। किंतु असंगी पंचेंद्रिय और विकलेंद्रिय प्रायोग्य विशुद्धि से भी इन कर्मों की देशघाती उदीर्णा का निषेध नहीं है। बहुत कहने से क्या चार संज्वलन और नौ नौकशायन की अनुभाग उदीर्णा एकेंद्रिय के भी देशघाती होती है, क्योंकि तत्प्रायोग्य विशुद्धि रूप परिणामों की संभावना वहां भी बिना किसी बाधा के पाई जाती है। यह इस सूत्र का तात्पर्य है। कल बात आई थी ना एकेंद्रिय में क्या होता होगा, तीव्र अनुभाग का उदय होता होगा। यह तो कहते उनकी विशुद्धि परिणाम ऐसे कि तत्प्रायोग्य विशुद्धि परिणामों की संभावना है। इसके मिथ्यात्व के बारे में तो कहा है, मिथ्या तो देशघाती होता ही नहीं है। मोहनी इन जनरल की बात चल रही
है, यह तो सज्वल और नौ नौकशायी की बात है ना।
वहाँ तो मोहनी इन जनरल बात चल रही है,
पर क्या एकेंद्रिय में कभी संज्वलन की देशघाती रूप उदय है तभी सर्वघाती भी उदय रूप है? हाँ,
एट अ टाइम कैसे दोनों उदय होगा, एट अ टाइम एक समय में कोई एक होगा ना। हाँ है ना, वो
अलग अलग उदय है।
देशघाती यानी वो संयम हो रहा है, ऐसी बात नहीं चल रही। यहाँ इन सब के मात्र देशघाती ही उदीर्णा होती है ऐसा उदाहरण नहीं करना चाहिए, किंतु इन जीव समासों में सर्वघाती उदीर्णा का सद्भाव निर्विवाद सिद्ध है। ऐसा जानकर देशघाती उदीर्णा वहां संभव नहीं है इस बात के निराकरण द्वारा उसकी संभावना का विधान अलग से ही सूत्र द्वारा किया गया।
तो यह देशघाती के साथ
सर्वघाती तो है, उसको बताने की जरूरत नहीं है, परंतु यहाँ देशघाती उदय उदीर्णा भी है ये बात चल रही। सर्वघाती तो सब जगह है, मिथ्या दृष्टि को भी, हमारे आपको भी होता होगा कि नहीं होगा। मिथ्या दृष्टि अवस्था में तो सब जगह है, उसकी बात नहीं है। इसलिए संगी मिथ्या दृष्टि से लेकर एकेंद्रिय तक के सब जीव समासों में इन कर्मों के अनुभाग में उदीर्णा देशघाती और सर्वघाती होकर प्राप्त होती है ऐसा निश्चय करना चाहिए। इस प्रकार सामान्य और विशेषता को लिए हुए घाती संज्ञा और स्थान संज्ञा इन दोनों का एक साथ कथन किया। अब दोनों ही संज्ञाओं का ओघ और आदेश से अलग अलग अनुगम करते हैं। ये तो संज्ञा वाला हमारा पहला नंबर दिया था कि हमने इसको उत्तर प्रकृति मुदीरणा में एक नंबर, वो 37 पेज पर वो वहां देंगे, अभी वही एक नंबर ही चल रहा है। इकतालीस पेज अपने, संज्ञा दो प्रकार की है, घाती संज्ञा और स्थान संज्ञा। घाती संज्ञा दो प्रकार की है, जघन्य और उत्कृष्ट। संज्ञा ही चल रही है अभी, संज्ञा 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 नाम का अनुयोग है, उसके दो भेद, घाती संज्ञा और स्थान संज्ञा।
तो यहाँ पे जब ये जो चार संज्ञा और नौ नौपस्थाय में देशघाती का उदय, तभी द्विस्थानीय लेना के चार चतुर्थानीय लेना, क्योंकि उसके साथ उसका
देशघाती चतुर्थानीय कैसे बनेगा?
नहीं, पर उसके साथ उसकी उदीरणा तो सर्वघाती की भी हो रही है।
एट ए टाइम आप सर्वघाती को या देशघाती को ना,
ठीक, पर यहाँ पे ऊपर ऐसे बताए ना कि देशघाती के साथ सर्वघाती की उदीरणा तो होती ही है,
साथ होती है, ऐसा कहाँ लिखा? मात्र देश सर्वघाती की ही होती है ऐसा लिखा है क्या? मात्र देशघाती की ही होती है ऐसा लिखा है? यानी वहां देशघाती की उदीरणा नहीं होती, ये बात का निराकरण किया है मात्र। वही तो उदय नहीं तो अब दोनों का उदय दोनों का।
देखो चार संजलन तीन वेदों में क्या बताया, एक स्थानीय, द्विस्थानीय और त्रिस्थानीय।
और तो वो एट ए टाइम की बात नहीं है, कौन कौन सी पॉसिबल है उसकी बात चल रही है। आइदर 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 लगाना उसे। एक समय में कोई एक हो गई ना उदीर्ण,
उन्होंने पूछा था पीछे, मेरे को वापस ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है, इससे मैंने पूछा।
देखो ये अभी संज्ञा यहाँ से फिर दोबारा समझा रहे हैं। तो घाती संज्ञा दो प्रकार की है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है, निर्देश दो प्रकार का है, ओह और आदेश। ओह से मिथ्यात्व 12 कषाय और सम्यक मिथ्यात्व के। उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा सर्वघाती है, ये मात्र सर्वघाती ही है प्रकृतियां। सम्यक्त्व की यानी सम्यक प्रकृति की। उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा देशघाती है। यहाँ आगे कुछ नहीं लिखा है, परंतु उत्कृष्ट भी देशघाती है और अनुत्कृष्ट भी देशघाती है। तो उत्कृष्ट तो द्विस्थानीय होगी,
अनुत्कृष्ट
अनुत्कृष्ट द्विस्थानीय और एक स्थानीय भी
होगी,
यानी मात्र लता वाली भी होगी ना, जब वो उसका क्षय होता है जो कुछ होता है सब। जघन्य अनुभाग का उदय होगा। चार संज्वलन और नौ नौ कषायों की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा सर्वघाती है। इसका जो उत्कृष्ट अनुभाग है, अन्य कषायों का भी जो उत्कृष्ट अनुभाग है वो तो नियम से सर्वघाती ही है। अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा सर्वघाती भी है, देशघाती भी है। सब नारकी, सब तिर्यंच, सब मनुष्य और सब देवों में जिन प्रकृतियों की उदीरना होती है उनका भंग उनके समान है। इसी प्रकार जघन्य को भी जान देना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जघन्य और अजघन्य ऐसा कथन करना चाहिए।
तो देव को छोड़ा, सब नारकी सब तीरियन तो सब बंदुष्य
सब देवों में लिखा है ना, आगे लिखा है वहीं पर। अब स्थान संज्ञा दो प्रकार की, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है, निर्देश दो प्रकार का है, ओव और आदेश। ओव से मिथ्यात्व 12 कषाय और 6-9 कषायों की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा चतुस्थानीय है। अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा चतुस्थानीय भी है, त्रिस्थानीय भी है और द्विस्थानीय भी है। सम्यक की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा द्विस्थानीय है, अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा द्विस्थानीय भी है और एक स्थानीय भी है। यानी एट ए टाइम किसी के द्विस्थानीय होगी, कभी कभी किसी के एक स्थानीय होगी। सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा द्विस्थानीय है, क्योंकि ये सर्वघाती प्रकृति है और ये तो दारू टाइप की होते हैं, तो उसके उत्कृष्ट भी उतने होंगे द्विस्थानीय और जघन्य यानी अनुत्कृष्ट भी द्विस्थानीय होंगे। 4 संज्वलन और 3 वेदों की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा चतुस्थानीय है और अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा चतुस्थानीय भी है, त्रिस्थानीय भी है, द्विस्थानीय भी है और एक स्थानीय भी है। 4 संयोजन और 3 वेदों में लिया। इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्य पर्याप्तकों में त्रिवेद नहीं है तथा मनुष्यनियों में पुरुष वेद और नपुसक वेद नहीं है, यानी उसकी उदीर्णा भी नहीं। यहाँ तक ख्याल में आई बात। आदेश से नारकियों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 7-9 कषायों की, अन्य 2 कषाय क्यों छोड़े, 9 कषाय
उदय नहीं है,
उदय नहीं है। उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा चतुस्थानीय है, अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा चतुस्थानीय भी है, त्रिस्थानीय भी है और द्विस्थानीय भी है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग ओव के समान है, यानी सम्यक्त्व में द्विस्थानीय है या एक स्थानीय। सम्यक मिथ्यात्व में तो उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट दोनों ही द्विस्थानीय है। इसी प्रकार पहली पृथ्वी में जानना चाहिए। दूसरी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक के नारकियों में इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सम्यक की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा द्विस्थानीय है। इसका अर्थ क्या है?
वहाँ पे स्थानीय नहीं होगी।
क्यों नहीं होगी?
कृतकृत्य वेदक,
वो कृतकृत्य वेदक अवस्था में सम्यक प्रकृति का अनुभाग अत्यंत जघन्य होगा, एक स्थानीय होगा। वो बात दूसरे से 7वीं पृथ्वी तक नहीं बन सकती, इसलिए उसको द्विस्थानीय कहा। हाँ, इसलिए उसका जघन्य नहीं होगा, द्विस्थानीय ही होगा। तिर्यंच और पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में मिथ्यात्व 16 कषाय और 9-9 कषायों की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्ण चतुस्थानीय है, अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्ण चतुस्थानीय भी है, त्रिस्थानीय भी है और द्विस्थानीय भी है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग ओग के समान है। इतनी विशेषता है कि तिर्यंच पर्याप्तकों में स्त्रीवेद नहीं है तथा योनिनियों में पुरुष वेद और नपुसक वेद नहीं है। सम्यक की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा द्विस्थानीय है। ये नारकी में चल रही है, कभी कहाँ
नहीं, नहीं तिर्यंच पे चल रही
है, तिर्यंच में भी चल रहे। हाँ, तिर्यंच और
तिर्यंच में तो एक स्थानीय भी होगी ना सम्यक की।
उत्कृष्ट की बात चल रही है,
नहीं उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट दोनों द्विस्तरीय बताइए।
योनिनी की बात चल रही
है,
यहाँ लिखा है तीर्यंश पर्याप्त को में स्त्रीवेद नहीं है, योनिनियों में पुरुष वेद अनुपुसक वेद नहीं है, सम्यक की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्ण द्विस्थानीय है, योनिनी की बात कर। पंचेन्द्रिय तीर्यंश पर्याप्त और मनुष्य पर्याप्त को में मिथ्यात्व सोलह कषाय और सात नौ कषायों का भंग नारकियों के समान है, इन्हें उत्कृष्ट है चतुस्थानीय होगा और अनुत्कृष्ट है चतुर्थीय द्विस्थानीय। सामान्य देवों में सामान्य तिर्यंचों के समान भंग है, इतनी विशेषता है कि इनमें नपुंसक वेद नहीं है, इसी प्रकार सौधर्म और ईशान कल्प में जानना चाहिए, इसी प्रकार भवनवासी वंतर और ज्योतिषी देवों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है इनमें सम्यक की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्ण द्विस्थानीय है, वहां भी कृतकृत्य वेदक नहीं उत्पन्न होते। सनत कुमार से लेकर सहस्रार कल्प तक के देवों में सामान्य देवों के समान भंग है, इतनी विशेषता है कि इनमें स्त्रीवेद नहीं है। अनंत कल्प से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में अपनी अपनी प्रकृतियों की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्ण द्विस्थानीय है।
अच्छा, यहाँ पे द्विस्थानीय है,
अपनी अपनी प्रकृतियाँ की, वहाँ जो उदय योग्य है उसकी बात की, इतनी विशेषता है समय का भंग ओक के समान है, इसी प्रकार अनारक मार्गणा तक जानना चाहिए। अब जघन्य का प्रकरण है, निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मिथ्यात्व बारह कषाय और छह नौ कषायों की जघन्य अनुभाग उदीर्ण द्विस्थानीय। देखो ये हम देखते हैं ना,
सर्वगाती देखते
हैं। हाँ, अजघन्य अनुभाग उदीर्ण द्विस्थानीय भी है, त्रिस्थानीय भी है और चतुस्थानीय भी है। सम्यक की जघन्य अनुभाग उदीर्ण एक स्थानीय है, अजघन्य अनुभाग उदीर्ण एक स्थानीय भी है और द्विस्थानीय भी है।
समित्व के अजगण्य अनुभाग उदीर्ण भी एक स्थानीय हो सके,
जगण्य नहीं है, लता वाले अनंत स्पर्धक है,
जगण्य नहीं है।
सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य और अजघन्य अनुभाग उदीर्ण द्विस्थानीय है। चार संज्वलन और तीन वेदों की जघन्य अनुभाग उदीर्ण एक स्थानीय है, अजघन्य अनुभाग उदीर्ण एक स्थानीय भी है, द्विस्थानीय भी है, त्रिस्थानीय भी है और चतुस्थानीय भी है। चार संज्वलन और तीन वेद की बात। इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है के पर्याप्तों में स्त्रीवेद नहीं है और मनुष्यनियों में पुरुष वेद और नपुंसक वेद नहीं है।
ये चार संज्वलन और तीन वेद में अंतरकरण के पश्चात एक स्थानीय हो जाएगी। हाँ, जब प्रथम स्थिति का उदय होता है
एक स्थानीय ही होता है वहाँ पर।
हाँ,
बताया था ना पहले।
हाँ, अंतरकरण के पश्चात।
हाँ, पश्चात आदेश से नारकियों में मिथ्यात्व सोलह कषाय और नाशांत नौ कषायों की जघन्य अनुभाग उदीर्ण द्विस्थानीय है। अभी ऊपर एक स्थानीय भी बताया था उन्होंने, जघन्य तो एक स्थानीय ही होता है और अजघन्य जब तक जघन्य लास्ट पॉइंट तक नहीं पहुंचा, अंतरकरण के बाद एक स्थानीय हो जाता है, शुरू में एक स्थानीय अजघन्य था एक स्थानीय, फिर जघन्य हो जाएगा। यानी लता वाले चल रहे थे वहाँ उदय, अंतरकरण होने के बाद अनुभाग बहुत अनंत गुणाहीन होकर एक स्थान रूप से उदय में आता है, लता वाला हो रहा है वो, और घटते घटते मिनिमम कहाँ कब होगा तब उसको जघन्य कहेंगे, परंतु अजघन्य भी एक स्थानीय था ना वहाँ पर, और शनि के पूर्व अवस्था में अजघन्य था, वो द्विस्थानीय भी था, त्रिस्थानीय भी था, अजगण्य ने जो जगण्य वो सारा अजगण्य, उत्कृष्ट के भी अजगण्य कहेंगे। जैसे उत्कृष्ट है मैक्सिमम, जो नहीं है मैक्सिमम वो सारा अनुत्कृष्ट कहेंगे, तो जगण्य को भी अनुत्कृष्ट कहेंगे। तो मिथ्या तो का जगण्य एक स्थानीय होगा कि नहीं होगा?
नहीं, नहीं है
वो सर्वघाती है, यानी उसमें अस्थि ये निशैल अस्थि और दारू बहुभाग इतने स्पर्धक हो गए।
वो कभी स्थानीय हो सकता है पर एक स्थानीय नहीं है।
एक स्थानीय कभी नहीं है।
ऐसे ही अनंत अनुबंधी में लेना है, अप्रत्यक्षण प्रत्यक्षण में भी लेना है।
संज्वलन में वो एक स्थानीय भी होते हैं, श्रेणी में है ना, क्योंकि उसका उदय होना चाहिए और वो अनुभाग घटकर उदय होना चाहिए, उस अपेक्षा लेना है।
तो एक स्थानीय तीनों वेद में ले सकते
हैं। हाँ, लिखा चार संज्वलन तीन वेद एक साथ लिए उन्होंने। अभी हम आदेश से देख रहे थे ना, आदेश से नारकियों में मिथ्यात्व 16 कषाय 7 नौ कषायों की जघन्य अनुभाग उदीर्णा द्विस्थानीय है। अब यहाँ एक अन्य किए ने यहाँ संज्वलन को भी लिया, नपुसक वेद है उसको भी लिया, परंतु एक स्थानीय होने का कोई चांस नहीं है। मिनिमम है फिर भी वो द्विस्थानीय। अजघन्य अनुभाग उदीर्णा द्विस्थानीय भी है, त्रिस्थानीय भी है, चतुस्थानीय भी है, क्योंकि जो जघन्य ने वो सारा अजघन्य। जघन्य कब होगा बोलो अच्छे
के काल में।
मिथ्यात्व का जघन्य सर्व विशुद्ध मिथ्या दृष्टि होगा, यानी उत्तम सम्यक के पूर्व में। अब अनंतानुबंधी का भी जब उदय है तब विषयोजना में उदय कहाँ है? वही पर होगा। और अन्य जो कषायों का जो जघन्य कब होगा? सम्य दृष्टि के होगा। सम्य दृष्टि जब सर्व विशुद्ध है तब उसका जघन्य होगा। अनुभाग का जघन्य उदय चाहिए ना हमें?
ये तो पहले नरक में होगा ना जघन्य जघन्य वाला।
पहले नरक में सम्यक प्रकृति का लेना
नहीं, जब भी अच्छा
विसर्जना तो सर्वत्र हो सकती है। और अजघन्य द्विस्थानीय त्रिस्थानीय चतुस्थानीय तीन नौ। कौन से पेज की बात कर रहे हैं आप? प्रस्तावना में आकरा 11। मिथ्यात्व का जघन्य आप पढ़ रहे हैं ना
टेबल में ना।
यानी मिथ्यात्व में से प्रथम उपशम प्राप्त करके संयमी होने वाले को लेना, उसकी विशुद्धि ज्यादा होगी। आप प्रदेश उदीर्णा मत देखो, जघन्य अनुभाग उदीर्णा का स्वामी बीच वाले कॉलम में है, सेंटर के कॉलम में है ना। संयम के अभिमुख हुआ अंतिम समयवर्ती सर्व विशुद्ध मिथ्या दृष्टि, करण लब्धि का अंतिम समय का
प्रश्न,
यानी प्रथम उपशम सम्यक्त्व के साथ सातवें में जाने वाला जो मिथ्या दृष्टि जीव है, मिथ्यात्व का उदय उसी के होगा ना। सम्यक्त्व प्राप्त होने के बाद मिथ्यात्व का उदय सवाल ही नहीं है। सम्यक्त्व का दर्शन मुख की क्षपणा में एक समय अधिक आवली काल शेष है उसके।
सुकृतकृति वेदक
चतुर्थ वेदक में भी आवली प्लस एक समय वाला सम्यक मिथ्यात्व का सम्यक्त्व के अभिमुख हुआ अंतिम समयवर्ती सर्व विशुद्ध मिथ्या दृष्टि। अनंतानुबंधी का वही जो मिथ्यात्व का लिया था वैसा ही जीव लेना। अप्रत्याख्यान का संयम के अभिमुख हुआ अंतिम समयवर्ती सर्व विशुद्ध असंयत समय दृष्टि। प्रत्याख्यान का संयम के अभिमुख हुआ अंतिम समयवर्ती सर्व विशुद्ध संयता।
अप्रत्याख्यान में ईश्वर प्रद्युम परिणाम वाला संयत सदृश दृष्टि भी लिया है। अप्रत्याख्यान में सर्वती विशुद्ध या ईश्वर मध्यम परिणाम वाला संयत।
कहाँ पढ़ रहे हैं आप? वो प्रदेश उदीर्णा में मत पढ़ो।
नहीं नहीं, ये 12 नंबर का पोईट्री में पढ़ो।
ये तीसरा कॉलम प्रदेश उदीर्णा का उत्कृष्ट है, वो जहाँ अनुभाग उदीर्णा जघन्य है वहाँ प्रदेश उदीर्णा उत्कृष्ट होती है, क्योंकि उसमें गुणश्रेणी होती है ना।
हाँ हाँ,
गुणश्रेणी वगैरह ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में क्या होता है, अनुभाग का घटना होता है और प्रदेश अधिक संख्या में निकल जाते हैं, प्रदेश उदीर्णा बढ़ती चली जाती है
गुणश्रेणी रूप बीज होने के समय।
ये तीसरा कॉलम है उनका है।
हाँ।
प्रत्याख्यान का अभी पांचवें में से सातवें में जाने वाला ले रहा। हाँ। अंतिम समय वाले संज्वलन चार और तीन वेद नेद हुआ है वहां पर वेद कर दो। हम 12 नंबर आपके पास पुस्तक नहीं है? ओ अच्छा अच्छा हाँ हाँ ठीक है। अपने अपने वेदक काल में एक समय अधिक एक अवली हुआ, आवली काल शेष रहने पर क्षपक के। और छह नो कषाय क्षपक अपूर्वकरण के अंतिम समय में,
अपूर्वकरण का अंतिम समय उदय की अपेक्षा
बाद में
अंतिम समय लेना है कि एक अवली प्लस एक समय, क्योंकि उसके तो उदय बीच जाता है ना आठवें गुणस्थान में।
हो छह नौ कषाय। मैं वेद की बात सोच रही थी, वेद तो ऊपर हो गया, उदय की उदय
तो यहाँ पे अंतिम समय वर्ती लेना कि एक अवली प्लस एक समय वाला लेना, उदीर्णा की बात है ना।
हाँ तो उसकी सत्ता में पड़े हैं बहुत सारे।
नहीं पर उदय तो रुक जाएगा तो उदीर्णा कभी होगी, एक अवली प्लस
उदय रुक जाएगा तो उदीर्णा भी रुक जाएगी उसके साथ।
तो वही मैं पूछ रहा हूँ
अवली काल पहले क्यों लेना,
अपूर्वकरण के एक अवली प्लस एक समय पहले जो भी अंतिम समय से एक अवली प्लस एक समय पहले वाले को लेना है ना।
यहाँ क्या लिखा है,
यहाँ पे
अंतिम समय लिखा है
तो वहाँ पे उदीर्णा चलेगी अंतिम समय वर्ती उसका उदय है।
हाँ तो बाद में उदय उदीर्णा सब मिट जाएगी, उदय मिल जाएगा। सत्ता में तो पड़ा है जहाँ उच्चिष्टावली प्रमाण रहता है वहाँ वो अंतिम अवली प्लस एक समय लेते हैं।
अच्छा यहाँ पे तो सवाल नहीं है, पड़े
ये तो अन्य रूप से संक्रमित होने वाले हैं, उदय मिटेगा इनका है ना। पैराग्राफ पूरा करते हैं हम, 44 पृष्ठ पर थे ना ये, हमने नारकियों में देखना शुरू किया था। अजगन्य अनुभाग द्विस्थानीय त्रिस्थानीय चतुर्थानीय होता है, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग ओघ के समान है, यानी वो कितने स्थानीय उसकी बात है। सम्यक्त्व का कैसा होगा,
एक स्थानीय और द्विस्थानीय,
द्विस्थानीय एक स्थानीय दोनों हो गए।
सम्यक मिथ्यात्व का द्विस्थानीय,
सम्यक मिथ्यात्व का द्विस्थानीय ही होगा, उसको जघन्य कहो या अजघन्य, यहाँ जघन्य की बात चल रही है ना अभी के। दूसरी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक के नारकियों में इसी प्रकार है, इतनी विशेषता है इनमें सम्यक्त्व की जघन्य और अजघन्य अनुभाग उदीर्णा द्विस्थानीय ही है, जघन्य भी द्विस्थानीय। तिर्यंचों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 नौ कषायों की जघन्य अनुभाग उदीर्णा द्विस्थानीय है, अजघन्य अनुभाग उदीर्णा द्विस्थानीय भी है, त्रिस्थानीय भी है और चतुस्थानीय भी है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग ओघ के समान है, इसी प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि तिर्यंच पर्याप्तकों में स्त्रीवेद नहीं है और योनियों में पुरुष वेद नहीं है और नपुंसक वेद नहीं है। योनियों में, योनियों में लिखा है, योनियों में सम्यक्त्व की जघन्य और अजघन्य अनुभाग उदीर्णा द्विस्थानीय है, क्योंकि यहाँ कृतकृत्य वेदक नहीं आते। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 7 नौ कषायों का भंग नारकियों के समान है।
यहाँ पे जगदीयत मिसाली है और बाकी
हाँ साथ इसलिए क्योंकि यहाँ तो नपुंसक वेद का ही उदय उदीरना होगी तो जगन ने भी द्विस्थानीय होगा। देवों में सामान्य तिरियंचों के समान भंग है, इतनी विशेषता इनमें नपुंसक वेद नहीं है। इसी प्रकार सौधर्म और ईशान कल्प में जानना चाहिए। इसी प्रकार भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है। इनमें सम्यक्त्व की जघन्य और अजघन्य अनुभाग उदीर्णा द्विस्थानीय है क्योंकि कृतकृत्य नहीं। सनत कुमार से लेकर सहस्रार कल्प तक के देवों में सामान्य देवों के समान भंग है, इतनी विशेषता है कि इनमें स्त्री वेद नहीं है। आनत कल्प से लेकर सर्वासिद्धि तक के देवों में अपनी अपनी प्रकृतियों की जघन्य और अजघन्य अनुभाग उदीर्णा द्विस्थानीय है। यानी आनत से लेकर ग्रवेक तक मिथ्यात्व की भी द्विस्थानीय होगी। इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व की जघन्य अनुभाग उदीर्णा एक स्थानीय है, अजघन्य अनुभाग उदीर्णा एक स्थानीय भी है और द्विस्थानीय भी है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। वो तो कृतकृत्य वेदक की अपेक्षा होगी। अब यहीं तक रुकेंगे। जावानी के ज्ञान ते तुझे लो पालो सोवानी मस्तकन सदा देत हो।
नमो अरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्रणम नमो लोहे सब्वसावणम। నమోరియంతానం నమో సిద్ధానం నమార్యాణం నమోవర్జనం నమో లోహే సబ్బస్థావనం। నమోరియంతానం నమో సిద్ధానం నమార్యాణం నమోవర్జనం నమో లోహే సబ్బస్థావనం। నమోరియంతానం నమో సిద్ధానం నమార్యాణం నమోవర్జనం నమో లోహే।